स्वप्न में मोहन कहते हैं कि हे भक्त हरदास, मैं ये मानता हूँ कि आपके हृदय में मेरी अविरल भक्ति है, पर जरा मीरा का भी तो ख्याल करो। वो भी बेचारी मेरी विरहम है, दुखारी है, इसलिए जाओ मेरे आदेश का पालन करो। मेरी जो प्रतिमा है, मूर्ति है, उसको जाकर आप मीरा को दे आओ, और ऐसा करने से मैं आप पर अति प्रसन्न हो जाऊंगा। याद रखिए, पाहुनिया पीतल प्रतिमा से हे प्रिय वह मोह दुसारो तुम, अपने जीवन को सफल करो, मुझको हर ठौर निहारो तुम। मेरी प्रतिमा को मीरा को दे आओ, अपने से अलग करो, अपने जीवन को सफल करो, मुझको मूर्ति की बजाय सारे संसार में देखो, हर एक वस्तु में देखो, क्योंकि आज मैं मीरा के दुख से बड़ा ही दुखी हूं। अगर तुमने उस मीरा को सुख दिया तो हरिदास, ये समझ लो कि ये सुख मुझे दे रहे हो, ये मान मुझको दे रहे हो। इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। जब बाबा हरदास के नेत्र खोले, झट झूली लेकर चल दिए कहां, राणा रतन सिंह के यहां। श्री राणा रतन सिंह जी के वाराज महल में आए हैं। मीरा की दशा निहारी तो नैनों में जल भर लाए हैं। बोले सैयार मीरे बेटी, तुझे धन्यवाद कहाँ तक दूँ मैं, बचपन में ही कृष्ण किए, बचपन में ही कृष्ण किए अपने, अति ही प्रसन्न तुझ पर हूँ मैं। हृदय अपने में कर, उनने ही यहाँ पठाया है, जो प्रतिमा प्राण अधिक मुझको उसे देने ही को आया है। वारे बेटी मीरा, वाह, धन्य है तेरा जीवन, तूने बाल्यावस्था से ही मोहन को अपना लिया। ले बेटी, विश्वास कर मेरी बात पर, मुझे मोहन ने ही कहा है कि मीरा को जाकर अपनी मूर्ति दे आओ, उनकी ही आज्ञा का पालन करने के लिए बेटी मैं ये मूर्ति तुझे देने आया हूँ। इतना कहकर बाबा हरदास ने अपनी झोली से प्रतिमा निकाली और बेटी मीरा को दे दी। मीरा आज वो मूर्ति पाकर महान आनंदित होती है, प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रह गया। चलते चलते श्रोता बंधुओं, बाबा हरिदास मीरा बेटी से कहते हैं, मीरा से श्री हरिदास ने अब वाणी उचारी, सच जानिए प्रतिमा मुझे है प्राण से प्यारी। बेटी मीरा, ये प्रतिमा, ये मूर्ति मुझको प्राणों से भी प्यारी थी, सो सौंप दीनी आज मैंने तुझको, पूजा में इसकी भूल ना हो राजकुमारी। बेटी, मैं तुमको मूर्ति तो दिए जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, इस मूर्ति की पूजा में कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। समय से भोजन कराना, समय से सुलाना, समय से नहलाना, बेटी चीजों का बड़ा ध्यान रखना। मीरा ने कहा, साधु कर चिंता ना तुम करो, जैसी तुम्हारी तैसी अब ये प्यारी हमारी। बाबा, ये मत समझो, जैसे प्यारी मूर्ति आपकी थी वैसे ही प्यारी रहकर मेरे पास रहेगी। मैं अपने मोहन प्यारे को रखूंगी इस तरह, शायद ये बिल्कुल भूल जाएं। बाबा याद है तुम्हारी। बाबा इस मूर्ति को मैं इतना सुख दूंगी, इतना समय दूंगी अपना कि शायद बाबा ये आपकी याद भूल जाएं। मीरा की ऐसी बात सुन हंस के यूं बोले साधु, बिटिया किसी को भी ना कभी भूले मुरारी। बेटा ईश्वर करे कभी किसी को मुरारी ना भूले। मुरारी जिसको भूल गए तो उसका संसार में क्या रह गया, उसे कौन याद रखेगा। अच्छा तो इनकी सेवा में लवलीन रहना तू, और अब रूप की तो यहां से है जाने की तैयारी। बंधुओं जाने की तैयारी, आज बाबा चल दिए और मीरा कृष्ण दीवानी मीरा हो गई। रात दिन अपने प्रभु के आगे बैठना सोना, संसार में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बस श्याम ही श्याम। रात दिन अपनी मूर्ति को हृदय से लगाकर कभी भोजन कराती है, कभी नहलाती है। अरे सब कुछ मान लिया, बाल्यावस्था से समर्पित कर दिया अपने को कृष्ण को, यानी हृदय में। आज मीरा ने मोहन को अपना पति भी मान लिया है। श्रोता बंधु, मेरे मोहन प्यारे प्यारे मोहन, ऐसी आवाज लगाती थी। उन्हें अपनी ओर रिझाने को मनमोहक नृत्य दिखाती थी। अरे श्रोता बंधुओं, ये कोई साधारण प्रेम नहीं है। प्रतिमा के सन्मुख खड़ी होकर कभी पागल हो जाती है, कभी हंसती है, कभी एक साथ रोने लगती है, कभी पूजा करती है। साधारण सा प्रेम नहीं है मीरा का मोहन के प्रति। साधारण प्रेम नहीं था यह मीरा का नंद दुलारे से। अरे बस समझो प्रेम असाधारण, प्यारी का अपने प्यारे से। भाइयों मीरा का कोई साधारण प्रेम नहीं था, बस अपने तन मन धन को समर्पित कर दिया मीरा ने मोहन को। एक रोज की बात है, मीरा अपने कृष्ण के पास विराजमान है। एक दिन कई सहेलियां आई मीरा के पास, ढंग देख कहने लगी हो बहुत हीरास। मीरा के पास सहेलियां आई और जब प्रतिमा के सन्मुख बैठा देखा, दोनों हाथ जोड़े मीरा बैठी है। सखियों ने कहा, ए मीरा क्या तू पागल हो गई है जो अज्ञान हृदय भर के बैठी है, इस पीतल की मूर्ति के सन्मुख दोनों हाथ जोड़कर बैठी है। अरे तुझे क्या हो गया है, क्या पागल हो गई तू। मीरा को ये बाण ऐसा लगा, हृदय जैसे छीट गया। क्रोध में कहने लगी, ए बहनों ए सहेलियों याद रखो, या तो आओ मेरे पास बैठो और इस पीतल की प्रतिमा को जिसे तुम बता रही हो इसके आगे हाथ जोड़ो, और यदि ऐसा नहीं कर सकती हो तो तुमको कसम है, शपथ है अपने माता पिता और भाइयों की कि फौरन यहां से मेरे सामने से भाग जाओ। आज जब ऐसा कहा, सखियां वहां से जलील होकर चली गईं और सारा हाल जाकर उन्होंने मीरा की मां से बताया। मीरा की मां ने जब अपने पति राणा रतन सिंह से कहा कि नाथ अब मेरी बात आप माने, अपनी कन्या विवाह योग्य हो गई है, बहुत जल्द ही कोई सुंदर सुयोग्य वर तलाश करके अपनी मीरा का विवाह कर दिया जाए। मेरे प्राण पति ब्याह बेटी का करिए, जल्दी से बेटी का विवाह कर दीजिए। महाराज ने कहा अच्छा ठीक है। महाराज के मन बसी रानी की यह राय, झट ही गढ़ चित्तौड़ को टीका दिया कराए। फौरन ही चित्तौड़ में टीका भेज दिया मीरा का। किसके यहां? जेठे सुत सांगा राणा के, टीका उनका भी चढ़ाया है। जिनका सुनाम था भोजराज, आदर से उन्हें बुलाया है। चित्तौड़ के राजा सांगा जो हैं भैया, उनके बड़े पुत्र का नाम था भोजराज और छोटे पुत्र का नाम था विक्रम सिंह। यानी भोजराज के साथ में मीरा का रिश्ता तय हो गया। भोजराज की बारात आ गई चित्तौड़ से चलकर राजा रतन सिंह के यहां, मीरा के यहां। बारात का स्वागत सत्कार हो रहा है। दूल्हा भोजराज विराजमान है मंडप में, मगर देखा बस देर है तो कन्या नहीं आई है, कन्या का आगमन होना है। काफी देर हो गई तो माँ आई है मीरा के पास। उधर तो बारात दरवाजे पर टिकी है, दूल्हा मंडप में बैठा है और मीरा अपने श्याम के साथ ध्यान लगाए बैठी है। जब माँ आई और देखा तो आज अपनी बेटी मीरा के निकट पहुंचकर माँ कहने लगी, अरे तू क्यों बैठी है यहाँ, लोग तेरी देखें बाटे वहां। अरे बेटी तू यहां बैठी है, वहां मंडप में लोग तेरा रास्ता देख रहे हैं, जाने तूने ये कैसा बेटी जान का रोग लगा लिया है। अरे जल्दी चल मंडप में चल, वहां लोग हंस रहे हैं, हंसी हो रही है, आज तेरा वहां ब्याह होना है, ब्याह, लोग तेरी बाट देख रहे हैं। जब मां ने ऐसा कहा, मीरा क्या उत्तर देती है? मुझे तू मत ले जाए कहीं, मेरे तो जीवन नाथ यहीं। अरे मैया तू मुझे कहां ले जा रही है, मेरे तो जीवन के प्राणनाथ मेरे सामने हैं। ब्याह मेरा हो चुका इस जगपति के साथ, और किसी के हाथ में अब नहीं देना हाथ। हरी मां अब तो संसार का जो जगतपति है उससे मेरा ब्याह हो गया है, अब किसी और के हाथ में मैं अपना हाथ नहीं दूंगी, आप भी मेरा हाथ मत देना। हरी मैया ऐसे पति को बनाने से क्या फायदा जो जन्म लेता हो और मर जाता हो। मां ऐसे वर का क्या करना, माँ ऐसे वर का क्या करना जो जन्म ले और मर जावे। श्री कृष्ण वरें तेरी मीरा ने हो सफल जन्म भव तर जावे। इतनी सुन
जन्मा महारानी के द्रग आगे हुआ अंधियारा सा। आंसू टूटे हैं एक साथ और आने लगा तमारा सा। धीरज धर मीरा से बोली है दुखी तेरी माँ अति बेटी। निज पति जो तैने बनाए हैं यह तो सब ही के पति बेटी। इनका भी ध्यान धरो बेटी पूजा आनंद करो बेटी। पर भोजराज को सामाजिक रीति से आज बरो बेटी। मंडप तर तू नहीं आज गई तो मैं यहां से न सिधाऊंगी। नहीं लोग हंसाई को देखूं बस यहीं पछार मर जाऊंगी। माँ कहने लगी बेटी अरे संसार के पति मोहन उनको अपना पति मान मगर बेटी ध्यान धरो पूजा करो अपने प्रभु की। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से मैंने तुम्हारी शादी जो है वो भोजराज के साथ रचाई है। चल के मंडप में बैठो और सामाजिक दृष्टि से भोजराज को अपना पति मानो। और बेटी याद रखो अगर आज तू मंडप में नहीं गई ना तो मैं यहां से हरगिज नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझसे लोक हसाई नहीं देखी जाएगी। यहीं तेरे आगे पछाड़ खाके अपने प्राणों को त्याग दूंगी। माता की देखी दशा सजल हुए हैं नैन। मीरा प्यारे सजनों ऐसे बोली बहन कि मत रोवे माता मेरी दशा न देखी जाए। मैं तेरा आदेश अब लीना शीस चढ़ाए। अरे मैया मत रो मैंने तेरा आदेश अपने माथे पर ले लिया। मत रो ठीक है माँ सामाजिक दृष्टि से मैं भोजराज को अपना पति मान रही हूँ मगर एक बात सुन ले बस तू चाहे जिसे सौंप दे माँ। ये मेरा मैया गोपाल का मन ये मेरा गोपाल का प्राण इन बिन ना मेरे बचेंगे। याद वही सदा सन्मुख बसेंगे। जहां भी मीरा का होगा बसेरा मैया गोपाल का मन ये मेरा। चाहे जिसको सौंप दे माँ लेकिन याद रख ये तन मन ये धन ये सब गोपाल का हो चुका है। बंधुओं वैदिक विधान से सामाजिक दृष्टिकोण से आज मीरा का विवाह भोजराज के साथ संपन्न हो गया। ब्याह हुआ सानंद अब बेदरीति अनुसार। पिता ने दी विदा मीरा सुता सप्यार। माता पिता ने सा प्यार अपनी बेटी की विदा कर दी। आनंद के साथ वेद रीति के अनुसार विवाह हो गया। डोली में बैठकर मीरा चल दी। भाइयों, मगर डोली में अकेली नहीं बैठी है, वो कृष्ण की प्रतिमा भी लिए है और किसी से कोई मतलब नहीं। आज डोली में खाना खिलाते सुलाते, यानी मेड़ता से चित्तौड़ तक मीरा डोली में गई है, लेकिन रास्ते भर अपने मोहन की पूजा करते गई है। शादी का ध्यान तो मीरा को रहा नहीं, बस ध्यान है तो मोहन प्यारे का। मोहन को साथ लेकर ससुराल पहुंच गई। देखा नर नारियों ने कि आज चित्तौड़ की कुलवधू मीरा चित्तौड़ में आ गई। पर मीरा नर नारी तो मीरा को देख रहे हैं और मीरा गिरधारी को देख रही है। ना सास ससुर की चिंता है, ना भोजपति बेचारी की, यदि मीरा को कुछ चिंता है तो बस ये नंद दुलारे की। कुछ खाए तो पहले उनको ही प्रतिमा को भोग लगाती है, सोती तो सोने से पहले प्रतिमा को शयन कराती है। ससुराल में मीरा आ गई। ना सास से मतलब, ना ससुर से मतलब, ना पति भोजराज से मतलब, बस मतलब है तो नंद दुलारे से। कुछ खाती है तो पहले उन्हें खिलाती है, सोती है तो पहले उन्हें सुलाती है, प्रतिमा के साथ सोती है। प्रभु की प्रतिमा को जगे झट दे जगाए, बैठे तो सन्मुख प्रथम लेती उन्हें बिठाए। जगती है तो जगा लेती है, बैठती है तो मोहन की मूर्ति को पास में बिठा लेती है। एक पलक को भी नहीं भूले उनका ध्यान, नाच नाच कर इस तरह गाती मधुरे गान। बैठ जाती है, नाच नाच कर मोहन को रिझाने लगती है। रिझाऊं कैसे तोए मैं मोहन प्यारे, तोए मैं मोहन प्यारे, तोए मैं मोहन प्यारे, रिझाऊं मैं कैसे तोए मैं मोहन प्यारे। कोटि भानु सम विपैक नख की नहीं दिया दिखाऊं, कमला चेरी जा सुलाए कहां मैं वास्तु चढ़ाऊं, जखाऊं कैसे तोए मैं मोहन प्यारे। रिझाऊं मैं कैसे तोए मैं मोहन प्यारे। बंधुओं, आज मीरा की तो ये दशा है। उधर जो मीरा के पति भोजराज हैं, उन्होंने जब आज अपनी पत्नी मीरा का ये विचित्र चरित्र निहारा तो आज बड़ा ही दुख हुआ भोजराज को, क्योंकि आज चित्तौड़ के सभी नरनारी जब मीरा की गति देखते हैं, श्याम के रंग में रंगी मीरा को देखते हैं, तो सब बड़ा आश्चर्य में है, ये कैसी बहू आई है राणा जी के यहां चित्तौड़ में। मन मारे कब तक भोजराज, जब आखिरकार सहा न गया, तो एक दिवस सन्मुख आकर मीरा से वचन अपार कहा। जब एक दिन की बात है, बर्दाश्त नहीं हुआ तो भोजराज मीरा के सामने आए और कहने लगे, अय मीरा, अय मेरी मीरा, तुम ये क्या कर रही हो? इस प्रकार से रोजाना ये प्रभु का ध्यान धरोगी? अरे क्या कभी तुमने मेरा भी ख्याल किया है जिससे तुम्हारी शादी हुई है? अरे जिनके हाथों में तुम्हारे माता पिता ने हाथ दिया है, या मेरे हाथों में तुम्हारे माता पिता ने हाथ दिया है, तुमने अपना हाथ मेरे हाथों में रखा है, कभी तुमने ये भी सोचा है कि मुझे भी तुम्हें अपनाना है? या सुन मीरा ने कहा, क्या कहते हैं आप, पति को दुख देना सदा मीरा समझे पाप। अरे स्वामी, आप कैसी बातें करते हैं, पति को दुख देना ये तो बहुत बड़ा पाप है। देखो, मैंने अपने माता पिता से पहले समझा दिया था कि मैंने अपना सर्वस्व अपने मोहन को सौंप दिया है। कर्मात पिता ने देह दान ये हाथ तुम्हारे हाथ दिया, पर जगत दिखावे को प्यारे, मैं पत्नी हूँ तुम मेरे पिया। मैंने सुझा दिया पहले ही माँ को, जो कठिन परन मेरा, तन जहाँ रहेगा वहीं रहे मेरे मन मोहन का मन मेरा। मैंने अपनी माँ को पहले समझा दिया था, मन मेरी आत्मा तो कृष्ण की है, केवल शरीर आपके पास में है। मैंने कभी आपको पति नहीं माना, मैंने पति मोहन को ही माना है। इसलिए देखिए, बस ये याद रखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से आप केवल मुझे अपनी पत्नी मानिए, लेकिन हृदय से तो मेरे तन मन धन सभी पर मेरे कृष्ण का, मेरे मोहन का अधिकार हो चुका है। आज जब ये बातें सुनी, प्रबल विरह की आंच समा जाती है भोजराज के। सुनी इतनी राणा चले गए, हाय मन हमार, मग धीरे धीरे उठे मन में दुख अपार। राणा के पैर धीरे धीरे उठ रहे हैं, वापस जा रहे हैं अपने महल की तरफ। और इधर भोजराज जब हटे, मीरा ने मोहन के सामने घुंघरू पहनकर नाचना शुरू कर दिया। जब पायलों की झनकार पति भोजराज के कानों में पड़ी, तो श्रोता बंधुओं आगे बढ़ा नहीं गया, लौटकर फिर वापस आ गए जहां मीरा नाच रही थी। जहां मीरा नाच रही थी अपने मोहन के सामने, जैसे ही सुनने के लिए दौड़े, जब मीरा ने पैरों की आवाज सुनी, नाच बंद कर दिया और अपने मोहन की प्रतिमा के सामने बैठ गई। आज जब नाच को बंद होते देखा, तो भोजराज कहने लगे, ये मीरा, अरे तुम अपने मोहन के सामने नाच सकती हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, अब मेरे आगे नाचो, मुझे अपना नाच दिखाओ, मैं देखो नाच ही देखने आया हूँ, तुम्हारा नृत्य देखने आया हूँ। मुझे देखते ही प्रिय नृत्य किया क्यों बंद, दिखलाओ निज नृत्य का मुझको भी आनंद। अरे अपने नाच का आनंद मुझको भी दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ। मीरा ने जवाब दिया, दिखा न सकती आपको मैं निज नृत्यानंद, अधिकारी मम नृत्य के बस हैं ये ब्रजचंद। मैं आपको नाच नहीं दिखा सकती, क्योंकि मेरे नाच के अधिकारी केवल ब्रजचंद हैं। भोजराज कहने लगे, नहीं प्रिय, नहीं प्रिय एक पलक को हिर पायल झनकार, नाच नाच कर सुना दो मती करो लाचार।